તારીખ 22/9/1991 પૂજ્ય ભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા હૈદરાબાદમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 42
जो भी अपने अपने रिवाज होते हैं, रूढ़ी होते हैं, घर में पद्धति होती है, उनको सामान्यतया अपने अपने धर्म मानते हैं, लेकिन उनमें धर्म की बात ऐसी है कि आत्मा का जो स्वभाव है वो धर्म है। अपने यहाँ सूत्र है वस्तु स्वभाव, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है, और वस्तु का स्वभाव मैंने आत्मा, वस्तु मैंने आत्मा, आत्मा का जो स्वभाव है वैसा ही अपनी हालत हो गई आत्मा की, तो उसको स्वभाव धर्म यानी सही धर्म कहते हैं। जैसे आत्मा का स्वभाव शांति है, आत्म शांति है, सुख है, आनंद है, ज्ञान है, जानना वगैरह, ऐसा स्वभाव है आत्मा, उसकी अविकृत मैंने सही अवस्था, जैसा स्वभाव है वैसी अविकृत अवस्था को धर्म कहने का है, और उसी की विकृत अवस्था को अधर्म कहने का। अधर्म मैंने क्या चीज कि जैसे सुख के बजाय आत्मा को दुख है, वो अधर्म है। दुख मैंने आपको कहा, कितने भी आदमी संपन्न हो गए लेकिन उसको चैन नहीं हो गए तो उसको सुख नहीं है, और सुख नहीं है इसलिए उसको धर्म नहीं है। और हमारे जो मुनिराज होते हैं उसमें कुछ बाह्य अनुकूलता वाले संयोग नहीं होते, जो संसारियों को होते हैं, गृहस्थियों को होते हैं। फिर भी एदंत सुई मुनि वितरागी क्या कहते हैं, तो जो वितरागी मुनि है वो तो एकांत रूप से सुखी है, तो वो धर्मी भी है और सुखी भी है। और जो धर्मी नहीं है उसको आत्म शांति और आत्मिक सुख नहीं है, इसलिए उसको अधर्म कहते हैं। तो वो धर्म के विषय में मूल की बात ऐसी है। और प्राणी मात्र का, मनुष्य मात्र का प्रयोजन सुख का है, आत्मिक सुख क्या है उसको हम ठीक तरह से नहीं समझते हैं, तो दूसरे दूसरे विषय में सुख की कल्पना करके इसके पीछे हम हमारी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसलिए ये जो ग्रंथ है, ज्ञानी है, उनके पास से हमें से ये बात समझनी है हमें कि वास्तव में हमारा सुख क्या है, वो भी अंधश्रद्धा से नहीं लेकिन वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तौर से समझे। जैसे वस्तु का स्वभाव ये वस्तु का विज्ञान है, जैसे सोना में सोना का गुणधर्म है तो इसकी कीमत अलग है, माटी में माटी का धर्म है तो इसकी कीमत अलग है, जैसे आत्मा में आत्मा का गुण धर्म है, उस गुण धर्म के माध्यम से उसी प्रकार से समझे तो ये अंधश्रद्धा नहीं कही जाएगी, उसको समझ पूर्वक की श्रद्धा कहने में आती है।
धर्म के बारे में कुछ भी सवाल होना चाहिए तो आत्म शांति के लिए होना चाहिए,
आत्म शांति के लिए होना चाहिए, आत्मिक सुख के लिए होना चाहिए। इसलिए कई लोग जो उस विषय में नए नए हैं वो ऐसी बात पूछते हैं कि हम तो शास्त्र की बातें समझते नहीं, शास्त्र के शब्द भी हमारे परिचित नहीं, तो हम इस विषय में कोई समझ नहीं सकते, क्या करें। और उम्र तो हो जाती है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सुख दुख को तो हर प्राणी समझता है। सुख दुख दुख से हरेक का मतलब भी है। तो बस यहाँ से समझने का प्रयत्न करेंगे तो सब बात समझ में आ जाएगी कि ये सुख का कारण है, दुख का कारण है, उसका साइंस कौन सा है, विज्ञान कौन सा है, कैसे जीव को सुख होता है, कैसे दुख होता है, किस तरह से ये धर्म का विषय मूल में वैज्ञानिक रूप से शुरू होता है और स्वयं ही विज्ञान है।
धर्मों के विषय में तो ऐसा हमारी उम्र अभी नहीं है तो ऐसा अरुण नहीं है, ऐसा भी होता है तो
छोटी उम्र वाले को। लेकिन सुख के लिए कोई उम्र का सवाल है क्या? बच्चे को सुख नहीं चाहिए, युवान को सुख नहीं चाहिए, बूढ़ा का सुख नहीं चाहिए, किसको सुख नहीं चाहिए? इसमें कोई उम्र से संबंध है क्या? तो सुखी होना है तो हर हालत में सुखी होना है, हर उम्र में सुखी होना है। तो वो तो क्या है, जिसको रूढ़ी कहते हैं, ऑर्थोडॉक्सी जिसको कहते हैं, उसमें वो बात है कि धर्म तो पिछले उम्र के पिछले उत्तरावस्था में करना, लेकिन ये कोई गारंटी थोड़ी है। गारंटी मिलती है उम्र की, कोई ले सकते हैं कोई, ये तो होता ही। इसलिए हमें सुख चाहिए तो अभी चाहिए, कल चाहिए ऐसी बात है क्या? आज भले दुख हो, अभी भले दुख हो, बाद में सुख का अनुभव करेंगे, ऐसे कोई चाहते क्या? अभी चाहिए, आज चाहिए नहीं लेकिन अभी चाहिए, ऐसा अभिप्राय।
धर्म बुद्धि से कहीं जाते हैं, किसी के पास से धर्म की बातें सुनते हैं, तो हम पता कैसे करें कि वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है?
सुख दुख से उसका माप करना कि ये आत्मिक सुख शांति मिलने के लिए कौन सा विज्ञान है इनके पास, बस समझ में आ जाएगी बात।
तो कोई शास्त्र पढ़ने में धर्म करना है, शास्त्र पढ़ना चाहिए, कोई कहता है शास्त्र धर्म करना है तो उपवास करना चाहिए,
इसलिए तो ऐसा नहीं कहा कि शास्त्र पढ़ना वो धर्म है या उपवास करना वो धर्म है या माला फेरना वो धर्म है या मंदिर जाना धर्म है, ऐसा तो कहा नहीं। इसलिए ऐसी तो कोई बात है नहीं। वास्तव में धर्म है वो तो आत्मा का स्वभाव रूप परिणमन है, वो धर्म है। फिर इसके लिए कौन से साधन अच्छे हैं? जैसे हमें संसार में प्रयोजन पैसा कमाने का है, तो इसके साधन कौन से हैं, कौन से हैं, किस लाइन में जाएंगे तो अच्छी कमाई होगी, फिर ये बात रहेगी। फिर प्रयोजन क्या है? प्रयोजन लाइन से नहीं है, प्रयोजन पैसों से है, तो उसमें ये फिर चुना जाता है कि हम सब्जी तरकारी का धंधा करेंगे तो उसमें कोई करोड़ों थोड़ा मिल सकता है, क्योंकि उसमें तो माल दुकान भर जाती है, 2,000-5,000 के माल में तो सारा गोडाउन भर जाता है। और हीरा का बिजनेस करे तो 1 करोड़ के हीरे तो जेब में रह जाते, गोडाउन की भी जरूरत नहीं। तो किस कौन सी लाइन में जाएंगे तो सबसे अच्छी कमाई होगी, ये बात बात की रही, मतलब कहाँ से है? तो फिर मतलब पूरा समझ में आ गया तो फिर मतलब के लिए फिर तो कौन सा बेटर निमित्त है? ये निमित्त है, साधन है वो तो निमित्त है, कौन सा बढ़िया है
वो चुनाव कैसे करें साहब?
बस प्रयोजन पर अगर हमारी पकड़ है तो बढ़िया ही हम पसंद करेंगे, जो कमजोर है उसको पसंद नहीं करें, सीधी बात है। आपको पैसा कमाना है, 2-4 लाइन आपको बता दें, इसमें ऐसा होता है, उसमें ऐसा होता है, फिर आपको सिखाना नहीं पड़ेगा कि कौन सा पसंद करो।
रोज 3 पोर्शन रखी करने रोजेप रिपोर्ट से ही नक्की कर लेना।
इसलिए हमारे तत्व ध्यान है कि जिसकी दृष्टि अपने पर प्रयोजन पर है वो कभी धर्म के विषय में गलती नहीं करता, भूल नहीं करता, उसको गलत फहमी कहीं नहीं होती। उसको सही बात, सब सही बात समझना में आती है क्योंकि उसकी दृष्टि प्रयोजन पर है।
गलत लाइन में चले जाते हैं तो प्रयोजन सही नहीं होने से चले जाते हैं, इसका मतलब सही नहीं है,
प्रयोजन की पकड़ नहीं आई है तो भूल जाते हैं, नहीं करना चाहिए वो करते हैं, नहीं मानना चाहिए वो मानते हैं।
दिखावे से करते होंगे क्या, बाहर का देखा देखी करते हैं,
अनेक प्रकार होते हैं। इसमें भी प्रश्न पॉइंट होता है, धर्म के क्षेत्र में भी जो लोग शामिल होते हैं उसमें भी प्रश्न पॉइंट से भी शामिल होते हैं, जैसे दान देने वाले होते हैं ज्यादा सबसे ध्यान दिया, तो क्रिया करने वाले सबसे ज्यादा तपस्या कर ली, पढ़ाई कर ली तो हम सबसे ज्यादा विद्वान होंगे बड़े, ये तो प्रश्न पॉइंट वाली बात होती है, उसमें धर्म नहीं है, उसमें इस प्रकार से धर्म कभी नहीं होता,
उस एंगल से धर्म नहीं सुनना।
नहीं बिल्कुल, आप लोग क्योंकि धर्म की लाइन में नहीं होता।
इतने सारे लोग तप वगैरह करते हैं, इतने सारे लोग तप करते हैं, उपवास करते हैं, थोड़े गलत करते होंगे, इतने सारे लोग कर रहे हैं तो गलत तो ही नहीं,
ज्यादा लोग करते हैं इसलिए सही है, ऐसी लौकिक में मान्यता बन जाती है। जैसे आज से 15 साल पहले होम हवन के लिए धर्म होता था, राजा भी हवन करते थे, सेठिया लोग करते थे, उसमें कांडा बज करते थे, आज तो मूर्खता कहेंगे लोग, ऐसे धर्म थोड़ा हो सकता है कि प्राणी को काट करके अग्नि में रख डाल दे और धर्म हो गए और इससे कोई बारिश आ जा रहे हैं, अंधश्रद्धा ही कहेंगे ना। लेकिन ज्यादा लोग करते थे तो जो ज्यादा लोग करते हैं उसको बुरा नहीं माना जाता, बुरा होने पर भी, इसलिए ज्यादा से अच्छाई बुराई का सही निर्णय नहीं हो सकता।
सही निर्णय कैसे करें इस लाइन में, सही निर्णय कैसे करें,
बस वही बात है कि हमारे आत्मा को सुख शांति कैसे हो इस पर चले जाना, फिर भूला नहीं पड़ेंगे, ये बात है।
आत्मा को सुख और शांति किस तरह प्राप्त होती है?
आत्मा को सुख शांति आत्मा का प्रधान, आत्मा का अनुभव ज्ञान, आत्मा में स्थिर रहने से सुख शांति मिलती है। जैसा आत्मा स्वरूप है वैसा ही हमें विश्वास और श्रद्धा जमती है, तो आत्मा में एक सुख नाम का गुण है, उसकी अविकृत मैंने सहज स्वाभाविक सुखरूप अवस्था प्रकट होती है जो अनुभव में आती है। तो आत्मा के सुख के लिए कोई बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है, ये अपने मुनिराज से हम देख सकते हैं, उनको तो कोई साधन नहीं है फिर भी वो सुखी है, और अपने यहां भी जितनी आवश्यकता हम बढ़ाते हैं उतनी आकुलता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। प्रैक्टिकली हम ये देख सकते, अनुभव कर सकते हैं कि जिसको जितनी ज्यादा आवश्यकता उतना वो ज्यादा दुखी, जिनको आवश्यकता कम उतनी आकुलता कम। तो आत्मा एक पदार्थ है, वो पदार्थ अपने स्वरूप से कैसा है, अपना स्वभाव से कैसा है, उसका जानकारी करते हैं और उस पर विश्वास से आता है, तब आवश्यकता के विषय में हम जो पंगु है वो हमारा पंगु पर छूट जाता है। ऐसा है कि किसी की मदद या किसी की आवश्यकता नहीं रहे हुए ऐसा ही खुद पदार्थ है। जैसे कि अस्थि के दर्शन में तो ये बात साफ है कि शरीर छूटता है तो भी आत्मा मरता नहीं। हम हमारे परिवार में आवागमन देखते हैं कि नए नए आते हैं पुराने जाते हैं, ये साइकिल चालू रहती है हमारे परिवार में। तो इसका मतलब क्या है कि पुराना जो देह जर्जरित हुआ तो देह गया, आत्मा कहीं और जगह चला गया, और कहीं से कोई आत्मा आ भी जाता है जो नया देह धारण करके आता है। तो ये जो हेरफेर है वो तो देह की हुई, आत्मा तो स्थानांतर होता है लेकिन उसका मृत्यु जब नहीं होता है तो वो सिद्ध करने की जरूरत नहीं, साबित करने की कोई जरूरत नहीं है कि आत्मा को शरीर की भी जरूरत है। बिना शरीर के आधार आत्मा जिंदा रहता है अनादि से अनंत काल तक, शाश्वत पदार्थ है। तो इसकी शाश्वतता जब महसूस होती है तो सभी प्रकार का भय है वो खत्म हो जाता है। प्राणी को सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है, बाकी के भय जो है वो इनकी पेटा रकम है, सब एक्सीडेंट का समझो या बीमारी का समझो, निर्धनता का समझो, चोरी का, लूट का, डाके का, कुछ भी हो, वेदना का है, सब भय है, वो मृत्यु के आगे कुछ नहीं है। जब मृत्यु का ही भय नहीं रहता है तो कितनी शांति होती होगी। जिसको मृत्यु का भय नहीं है तो भय का दुख गया, भय से तो दुख होता है, जब भय का दुख नहीं है तो कितना सुख होता होता हुआ, वो अनुभव की चीज है, अंदाज लगा सकते हैं।
भाई तो सबको रहता ना, भाई भय किसको नहीं रहा, सबको रहता भाई को टक्कर होने का, वहां फरमा देना तो टक्कर होने, उनको तो कोई शांति नहीं है।
किसको?
जिसको भय रहता है उसको तो कोई शांति रहता है,
शांति नहीं
है। भय छोड़े तो शांति है,
तो भाई कैसे
छूटता नहीं, शांति मिलती नहीं,
भाई कैसे छूटेगा?
नहीं
छूटता है, अपना शाश्वत स्वरूप है आत्मा का, उसका अनुभव होवे, हमारी शाश्वतता का अनुभव होवे तो हमें लगेगा कि हम तो हमेशा हमेशा जैसे के वैसे रहने वाले हैं। हमारी आत्मा में गुण की संपत्ति है, सुख भी एक गुण है, वो संपत्ति है जिसको प्रॉपर्टी हम कहते हैं, ज्ञान भी एक गुण है जो हमारी प्रॉपर्टी है। हमारी शाश्वत सत्ता मैंने अस्तित्व, परमानेंट एग्जिस्टेंस जिसको बोलते हैं, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन हमको भय होता है कि हमारा नाश हो जाएगा तो उसमें हम फालतू दुखी होते हैं।
तो कल्पना है क्या भाई?
एक कल्पना है, रस्सी में सांप दिखता है तो डर लगता है, लेकिन पता चला कि ये सांप नहीं है रस्सी है तो डर खाएगा। वैसे जब हमें पता चला कि हमारे में ज्ञान, सुख, अस्तित्व आदि वगैरह अनंत गुण की संपत्ति है, वो हमेशा हमेशा उतने की उतनी रहती है, कमी नहीं होती, और परिपूर्ण होने से उसमें कोई वैसे करने का भी कोई सवाल नहीं। जब ऐसा हमें अनुभव ज्ञान होता है जिसको आत्मज्ञान कहते हैं हमारी भाषा में, ऐसा होने से आत्मज्ञानी को भय नहीं होता, उसको शांति रहती है, सुख रहता है, भीतर से वो सुख शांति आती है।
तो आत्मज्ञान होने से आती है शांति।
हाँ, आत्मज्ञान ही आत्म शांति का कारण है, यही बात है।
उनको आत्मज्ञान हो सकते
हैं।
हाँ बराबर, बड़ा रहता है या ज्ञान बड़ा रहता है, रज जो बोलते हैं ना, रज जो बोलते हैं ना, वो बड़ा है।
नहीं नहीं, फर्ज
फर्ज
फर्ज फर्ज
फर्ज फर्ज करते हुए
कर्तव्य 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 कर्तव्य
कर्तव्य बड़ा रहता है या धर्म बड़ा रहता है?
धर्म और कर्तव्य में अंतर आप कैसे समझते हो?
समझते नहीं थी आपसे पूछते।
अच्छा तो कोई बात नहीं, पहले तो मैं क्या आपका प्रश्न समझूंगा फिर तो सही उत्तर था। कर्तव्य मैंने करने योग्य और धर्म मैंने अपना सुख शांति, आत्मा की सुख शांति, तो आत्मा की सुख शांति करने योग्य है कि नहीं है? आत्मा को, हमारे आत्मा को हमारी सुख शांति जो है वो करने योग्य है कि नहीं करने योग्य है?
धर्म
है,
धर्म क्या शांति आपने कर्म योग तो है।
मेरा बोलने का मतलब क्या है?
इसलिए
जीवन में पैदा होता है उसका फर्ज बड़ा रहता है या धर्म बड़ा रहता है पहले स्टेज में, ये पूछना है।
फर्ज आप किसको कहते हैं जब तो मैं पूछना ही नहीं चाहूंगा।
फर्ज बोलने का क्या मतलब है? मेरा संसार है,
ठीक
है, मेरे संसार में एक अपंग है, एक अनपढ़ है, छोटे बच्चे भी है बड़े बच्चे भी, तो मैं उनको निभाना है या धर्म को निभाना?
मूल में बात ऐसी है कि हमने मान लिया कि मैं मनुष्य हूं, लेकिन वास्तव में हम एक आत्मा है, हम एक जीव है। ये मनुष्यपना है, कुछ काल तक का एक वेश है, एक नाटक का एक प्लॉट है, अभी कोई एक्टर है, एक अंक में वो राजा है और एक अंक में वो गरीब है। वास्तव में वो एक्टर है, न राजा है न अंक है। तो ऐसे हमारा भी एक प्लॉट है कि ये हम परिवार में आते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, आप हमारे माँ बाप होते हैं, परिवारजन होते हैं, ये प्लॉट है, वो वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता का स्वीकार हमें करना पड़ता है, क्यों? कि वास्तविकता जो उतनी होती तो हम हमेशा वहां ही रहते, लेकिन हम चाहें नहीं चाहें हमारा प्लॉट जब पूरा होता है हमें ये और जगह दूसरा प्लॉट निभाने को जाना पड़ता है, लेकिन वो भी एक प्लॉट है। अब जो भी जितने भी प्लॉट है उतना वहां हम पूरा पूरा मान लेते हैं, ये एक हमारी गलती है। प्लॉट को प्लॉट नहीं मान करके हम सर्वस्व मान लेते हैं, तो ये हमारी गलती है। पहले तो हम सही समझ करें तो वास्तव में हम है क्या। देखिए आपके घर में आपको पता ही नहीं है कि आप धनी हैं या नौकर हैं, तो आप सही कार्य कोई कर्तव्य नहीं कर पाएंगे। वैसे हम मूल जाति से एलिमेंट्री हमारा तत्व कौन है, जहां तक हम हमारी जाति की पहचान नहीं करेंगे हम कौन है इसका निर्णय निश्चय नहीं कर पाते, वहां तक हमारा कर्तव्य भी हम ठीक तरह से क्या कर्तव्य है का क्या अकर्तव्य है वो भी नहीं समझ पाएंगे। ये बात हो जाएगी।
ऐसा नहीं है, जो मनुष्य को अपने को पहचानना चाहिए वो सही है, लॉट है वो भी सही है, और ये सब यही रहने का है वो सही है। तो मेरा जो बोलने का अर्थ क्या था, मैं तो मुझे इतना ज्यादा धर्म के मामले में नहीं जानता हूँ, ये जो मेरा जो बोलने का मतलब है कर्तव्य बड़ा है या धर्म बड़ा है, इसका मैं पूछने का मतलब क्या है कि मनुष्य को इंसान को अपना कर्तव्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि एक एक्टर को प्लॉट बड़ा है या वो एक्टर वो जो है वो बड़ा है, क्या है जो भी वो है। फिर उसने एक भिखारी का वेश धारण किया और उतना वो एक्टिंग करने लगा कि दूसरे लोग देखने वाले रोने लग गए, तो बेचारा कितना दुखी है। अभी वो उसका अभिनय बड़ा है या खुद ही बड़ा है, कौन बड़ा है आप कहिए?
तो सही है, उसका अभिनय बड़ा है, खुद बड़ा नहीं है।
ऐसे ही हमारी जो फर्जे हैं इस प्लॉट में वो क्या है कि कुछ काल के लिए फॉर द टाइम बीइंग जिसको कहते हैं, और हमारा जो जीवन है वो अनादि अनंत है। हमारा सीधा प्रश्न ये है कि हमें कुछ भी करके हमें सुख चाहिए क्या? हमको कुछ भी करना है वो सुख के लिए करना है, और सुख का प्रश्न ऐसा है, हमारी जो सुख की समस्या है वो किसी ने सोची हो या नहीं सोची हो, लेकिन सुख की जो हमारी डिमांड है वो ऐसी है कि हमें पूरा सुख चाहिए, अभी ही चाहिए, उधार नहीं, अभी चाहिए, पूरा चाहिए और हमेशा के लिए चाहिए। ये बिना सोचे या सोचे यही हमारी डिमांड है हर प्राणी की, हर जीव की। जब यही बात है मूल में, तो इसके विषय में हमें पूरी गहराई में जाना जरूरी है कि वास्तव में हमें ऐसा सुख कैसे मिले। टेम्पररी सुख के लिए हम सम्मत नहीं होते कि भाई घंटा भर सुख मिलेगा फिर बाद में हमको दुख में डाल देंगे, कोई पसंद नहीं करेगा। ऐसे ये प्लॉट में सुख मिलेगा, दूसरा प्लॉट में दुखी हो जाएंगे, कोई पसंद नहीं करेंगे। जैसे आपको बता देवे आपका आगामी भाव, ये देखिए आपने ऐसा जीवन जिया है इसलिए आपको आगामी भाव ऐसा मिलने वाला है, तो आप नापसंद करेंगे। लेकिन उसमें तो कुदरत का कानून काम करता है, किसकी इच्छा का काम नहीं होता, इच्छा के अनुकूल नहीं बनता। तो इसलिए ऐसा क्यों होता है, जैसे मैं मुझे आप सुखी देखते हो और इनको दुखी देखते हो, तो आपको विचारशीलता में या बुद्धिमानी में ये विचार होना आवश्यक है कि ऐसा क्यों। आज मेरा शरीर तंदुरुस्त है, कल इधर वेदना चालू हो जाती है, कोई रोग पैदा हो जाता है, क्यों? कोई भी परिस्थिति बिना कारण होती नहीं, ये कारण कार्य का लॉजिक है। इसलिए हम कारण जुटाते हैं सुखी होने के लिए और उसका फल चाहते हैं सुख। जब ये सुख कारण कार्य से संबंधित चीज है तो हमें उसकी पूरी तलस्पर्शी जानकारी करनी हमारे लिए हमारा पहला ड्यूटी होता है, ये पहला फर्ज है। ऐसा हम करें नहीं तो फिर हमें सुखी होने का बनना आगे बनने का भी सवाल नहीं रहता। दुख आ जाता है लेकिन हम नहीं जानते कि हम दुखी क्यों हुए, इसका यही कारण है।
तो मतलब सर ये हुआ कि सुखी जिसको होना है उसको पहले सुख के उपाय को ढूंढ लेना चाहिए,
सुख सुख के कारण को समझना चाहिए और दुख के कारण को भी समझना चाहिए। सुख और दुख आत्मा को जीव को होता है, तो क्यों होता है, कौन सा इसके पीछे साइंस है, कौन सा विज्ञान है, वैज्ञानिक कारण कौन सा है, अंधश्रद्धा से हमें कुछ स्वीकार नहीं करना, क्योंकि हम एक विचारशील बुद्धि का है। हम कोई धंधा बिना विचार कर लेते क्या? जोहरी बाजार में जोहरी करोड़पति अरबपति देखने में आते हैं, फिर भी बिना समझे हम दुकान लगा देते नहीं। जरूर पड़ते तो हम उसके यहाँ नौकरी भी कर लेते संपन्न होते हुए भी, कि हमको समझना है, सीखना है ये धंधा कैसे होता है। सीख करके हम कुछ भी करेंगे, लेकिन सीखने के लिए तो नौकरी भी करेंगे, है कि नहीं? इसलिए कोई बात बिना समझ करना इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। धर्म के विषय में अंधश्रद्धा है वो कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। सारी बात को हम ठीक तरह समझे, वैज्ञानिक तौर से समझे तो सब समस्या मिट जाती है, अगर नहीं समझे तो सब समस्या कभी मिटने वाली नहीं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला कर्तव्य है कि सही समझ करना।
मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम अपने सुख के उपाय में लग जाएं, धंधा वगैरह छोड़ दें, तो फिर उनको कौन रोटी देगा? उनको कौन रोटी खिलाएगा, उनको कौन स्कूल भेजेगा, क्या करेगा, हम अपने चक्कर में लग जाएंगे और उनका कुछ नहीं होगा। मेरे को ऐसा फिर अपने मतलब में लग जाना, ये तो गलत, हमारा फर्ज का काम नहीं हुआ, हमारा फर्ज का काम नहीं हुआ तो हम गलत कर रहे हैं, अपने चक्कर में लगे हैं।
क्या भाई साहब का प्रश्न? निवास और परमार्थ क्या है? ऐसे ऐसा एक प्रचलित अभिप्राय है कि धार्मिक लोग स्वार्थी होते हैं, अपने सुख का विचार करते हैं, परिवार जन के सुख का विचार नहीं करते हैं। इस पर यही प्रश्न है,
उनका भी यही है, उनका भी
उनका भी यही है।
ठीक बात है,
उनका प्रश्न
अभी देखिए, जगत में ऐसा कौन है जो अपने परिवार को अच्छे से अच्छे सुख में रखना नहीं चाहते हो?
वही चाहता है।
कौन जगत में ऐसा परिवार वाला है, एक तो दिखाओ मुझे।
कोई भी नहीं
है। फिर हालत क्या है?
हमारा बोलने का मतलब वो नहीं है, मनुष्य के जीवन में कुछ जैसे धर्म है वो भी एक चीज है, उसको भी मानना जरूरी है कि अपनी कल्याण की चीज है, तो कल्याण के अलावा भी अपना कर्तव्य क्या है उसको भी देखना चाहिए ना, नहीं देखना चाहिए, मेरा पूछने का वो ही है पीछे।
ऐसा
फर्स्ट स्टेज किसको लेना और सेकेंड स्टेज किसको लेना, मेरा बोलने का अर्थ इतना ही है।
ठीक है, लेकिन पहले हम ये तो समझे कि हमारा कार्य क्षेत्र की मर्यादा कितनी। हम तो हमारे बच्चे को सोने की थाली में अगर जितना मिलता है तो हम स्टील की थाली में जिमाना नहीं चाहते।
ऐसा नहीं,
नहीं हर एक को ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मिलता है तो कोई धक्का नहीं देता है,
कोई नहीं देता।
सोना मिलता है तो कोई माटी नहीं चाहता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक के अभिप्राय को हम अच्छी तरह जानते हैं, मिलता है तो कोई ना नहीं देता। बात यह है कि हमारे कार्य क्षेत्र की मर्यादा तो हम समझे, अगर हम मर्यादा नहीं समझेंगे, मैंने कारण कार्य का लॉजिक को साइंस को नहीं समझेंगे तो हम ऐसे ही हवा में ही चलेंगे। बात तो समझे नहीं तो हवा में चलेंगे, इससे कोई काम नहीं होने वाला है। हम पहले हमारे कार्य क्षेत्र की मर्यादा समझे और फिर हम जो भी करना चाहें उसमें क्या यथार्थता है, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है वो समझ पाएंगे। करना तो हमें करना होगा, इससे क्या फायदा है?
इसका मतलब तो ये हुआ कि हम बच्चे हैं, पाल बच्चों को हम संभाल कर नहीं सकते हैं, मूल में तो ये बात है। ऐसा कुछ
कर नहीं सकते हैं ऐसा मानकर हम सब इस प्रकार के प्रवृत्ति को छोड़ दें क्या? फिर प्रश्न ये आ जाएगा, प्रश्न ही आ जाएगा इसके पीछे
मर्यादा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आने वाला है वो तो अपने को ख्याल में होना चाहिए ना।
पंडित जी प्रश्न ऐसा है, बोल रहे थे धर्म उसका पालन पोषण छोटे धर्म में लग जाना अच्छा है या लग जाना अच्छा है?
ऐसा नहीं है, पहले तो मर्यादा का बोले तो क्या लिमिटेशन है क्या? वो मर्यादा का जो मर्यादा तक अपने को नजर में आएगी ये मर्यादा है, वो मर्यादा का अगर कंप्लीट हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि अपना जीवन धर्म में देना चाहिए। मैं मेरा विचार बोल रहा हूँ, वो मेरी ना गलती है, आप मेरे को समझाइए। तो मेरा क्वेश्चन पूछने का अर्थ है कि जो मैंने मर्यादा या गृहस्थी ने जो मर्यादा बनाई है छोटा बड़ा उसका फर्ज जो अदा करना है, भाई ये बच्चा हो गया इसको एजुकेशन दिलाना, ये भी एक मर्यादा है या नहीं?
अब देखिए मेरा एक प्रश्न है कि हमारे परिवार में जो भी बच्चा बच्ची जो भी होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, वो कोई अपना पूर्व कर्म संचित कर्म अपना नसीब जिसको बोलते हैं वो लेकर आते हैं या हम इसका नसीब बनाते हैं, ये एक मेरा प्रश्न है। क्या होता है ये हमारी जो परिस्थिति बनती है एक फल है और इसका कोई कारण होता है, बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है, ये तो मानना पड़ेगा। रोटी में आटा में पानी डालेगा बाद में रोटी बनेगी या सीधी रोटी बनेगी, तो उसकी पूर्व स्थिति होगी फिर बाद की स्थिति होगी। कारण कार्य का लॉजिक तो विश्व में साइंस को हम अवॉइड नहीं कर सकते। विज्ञान है वो एक हार्ड फैक्ट है जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते। तो हरेक प्राणी जो संसार में जन्म पाता है वो तो बिना पूर्व कर्म लिए आते ही नहीं। कभी एक मनुष्य झोंपड़ी में जन्म लेता है, एक महल में जन्म लेता है, दोनों मनुष्य हैं और एक ही समय पैदा होता है, एक ही घड़ी में एक ही जिसकी कुंडली दिखाओ तो कोई फर्क नहीं है उसमें कि एक टाइम पर कुंडली एक से निकलेगी उनकी ज्योतिष की। तो फिर भी एक गरीब है, एक तमंगर है, एक राजा है, एक रंग है, वो जन्मते ही बीमार है। क्या जन्मा ही बीमार, और एक जन्म में तंदुरुस्त है, बहुत बड़ी तंदुरुस्ती है। हरेक परिस्थिति के पीछे इसका कारण है। अब इस कारण को हम इग्नोर करें या नहीं स्वीकार करें, और हमारा अधिकार से हम कहेंगे कि हमको ऐसा कर देना है, ये बात कुदरत तो मंजूर नहीं करती।
कुदरत इसको नहीं मानती।
हम माने कि नहीं माने, कुदरत मंजूर नहीं करती इसको। इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं, परिवार हैं, वो भी इनके नसीब लेकर के आए हैं।
नसीब लेकर आए वहां तक ठीक है, अपना करते हुए अपन के उसके बाद में भी अगर उन्हें अच्छा नहीं हुआ तो अपन बोलते थे अगले का नसीब ये है।
देखिए कुदरत से हमारा जो पारिवारिक संबंध है दूसरे जीवन के साथ, तो उनके प्रति अनुराग होना, राग होना या द्वेष होना, ये भी कुदरती होता है। एक भाई है, इसके प्रति राग होता है तो हम इसकी अनुकूलता को देखने लग जाते हैं। होती है नहीं होती है वो तो उसके मुकद्दर के हिसाब से ही होती है या नहीं होती है, लेकिन हमारा भाव रहता है कि हम तो अनुकूलता रहे। वही भाव, वही हमारे जो भाई हैं वो तो उसके प्रति द्वेष भी हो जाता है कभी। फिर हम क्या देखते हैं कि दुखी हो गए तो अच्छा है, फिर भी हमारे परिणाम से वो दुखी नहीं होगा, हमारे भाव से वो दुखी नहीं होगा, हमारे भाव से न वो सुखी होगा न हमारे भाव से वो दुखी होगा।
वो तो अपने
इसलिए हमारा कार्य क्षेत्र की मर्यादा अगर हम नहीं समझेंगे तो इस अनसमझन से हम ज्यादा दुखी हो जाएंगे। उनका तो होगा सो होगा, लेकिन हम ज्यादा दुखी हो जाएंगे, ये बात बन जाएगी।
दुख सुख की बात नहीं पूछ रहा हूँ कि भाई अपन जितना ज्यादा उसके डीप जाएंगे उतने ज्यादा अपन दुखी हो जाएंगे, और अपनी लिमिटेशन से ज्यादा ही अगर कुछ अपन फर्जा करें तो भी अपन दुखी हो जाएंगे। मेरा बोलने का तात्पर्य यह नहीं था तो मनुष्य जीवन में जब मनुष्य आता है तो अपना कुछ कर्म उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
इस सहज अनुराग रहता ही है, और कौन ऐसा है कि जो नहीं करता है अपने परिवार के लिए प्रवृत्ति नहीं करता, ऐसा कौन है? पागल हो जाएगा वो।
इसके अलावा भी एक चीज़,
अगर वो अपने वृत्ति को दबा करके रखेगा तो पागल हो जाएगा। क्या होगा
अगर आत्मा अगर मानती है कि किसी की सेवा करना तो वो धर्म बड़ा है या केवल धर्म करना बड़ा है?
धर्म मैंने क्या,
धर्म का क्या है? जो धर्म की चर्चा है, अपन मंदिर में जाते हैं, ये मैं अर्थ बोलो नहीं जानता हूँ, मैं धर्म को उतना ही समझता हूँ। तो धर्म के जैसे अपन सब लोग बैठे हैं, धर्म की चर्चा कर रहे हैं।
हमने ये चर्चा का विषय यहाँ से शुरू किया कि न मंदिर जाना धर्म है, न माला फेरना धर्म है, न शास्त्र की पढ़ाई करना धर्म है, न उपवास करना धर्म है। हम इनको धर्म मानते ही नहीं। हमारे धर्म की मान्यता ही कुछ अलग है, इसलिए ये रूढ़ी है, सब ये रिवाज है। ये रूढ़ी रिवाज में धर्म नहीं होता, कभी धर्म चीज ही नहीं है। वो जैन दर्शन का सूत्र ही धर्म का अलग है कि वस्तु स्वभावो धर्मो, वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। हमें एक आत्मा है, आत्मा में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, सुख, शांति, आनंद, अस्तित्व आदि इनकी प्रॉपर्टी है, उनकी सही अविकृत अवस्था को धर्म कहते हैं और उसकी विकृत अवस्था को अधर्म कहते हैं। बस उतनी बात है, धर्म अधर्म में दूसरी कोई बात नहीं है। अगर इस प्रकार से इनके आत्मा के साइंस को समझा जाएगा और उसी माध्यम से कर्तव्य कर्तव्य को कर्तव्य की मर्यादा को समझा जाएगा तो कहीं भी कोई आपत्ति नहीं आती।
कोई भी विषय को अपन मर्यादा दिए तो आपत्ति नहीं आती, और मर्यादा से अगर ज्यादा कोई भी चीज कर लिए
तो
गलत है ही है।
गलत है ही। तो हम क्या करें, हम मर्यादा का उल्लंघन कर लेते हैं। जब तक हम आत्मा का और परमाणु का विज्ञान नहीं समझते। देखिए सभी जीव को मतलब तो सुख से है, खाना है तो सुख के लिए, नहीं खाना है तो सुख के लिए, खाते खाते बंद रहना भी सुख के लिए, सोना है तो सुख के लिए, सोते सोते थक जाए तो खड़ा होना भी सुख के लिए, मतलब तो सुख से है। व्यापार करना है तो सुख के लिए, और व्यापार कर करके दिमाग खत्म हो जाए तो नहीं व्यापार करना भी सुख के लिए। बात तो सब सुख के लिए है। जब बात सुख के लिए है तो हम सुख का साइंस तो समझे कम से कम। अगर हम कुछ विचारवान है, बुद्धिमान है, तो ये सुख है क्या चीज?
सुख का मतलब क्या है कि अगर मेरी आत्मा में अगर कोई विषय बनाया और मेरी आत्मा से अगर मैं कुछ किया और उसमें अगर मेरे को शांति मिले तो उसको सुख समझना चाहिए क्या?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सुख शाश्वत सही सच्चा सुख ऐसा होना चाहिए कि जो जो सहज रूप से हमेशा उपलब्ध रहे, ये सच्चा सुख है। कभी थोड़ा हो जाए फिर दुख हो जाए, ये सुख का पश्चात सुख वो सुख नहीं।
पश्चात दुख
वो सुख नहीं। मैंने खाते खाते फिर वॉमिट होने लगे, ये खाने का सुख नहीं है। कल्पना है सुख क्या और सुख की कल्पना क्या, जो दोनों का अंतर हमें समझना पड़ेगा। तो इसके लिए सही बात यह है कि हम तात्विक रूप से सुख को भी समझे, दुख को भी समझे। देखिए सुख और दुख एक अनुभव की चीज है, है ना? अनुभव में आता है। तो जीव के और हमारे अगल बगल में जो परमाणु की व्यवस्था है, कोई मकान के रूप में है, शरीर के रूप में है, या इसके दूसरे अनेक प्रकार के पंचेंद्रियों के विषय के रूप में, जो भी परमाणु की व्यवस्था है, अवस्था है, उसमें आपस दोनों का विज्ञान क्या है, गुणधर्म क्या है, और आपस में कौन से एक्शन रिएक्शन होते हैं जिससे सुख दुख का अनुभव होता है, इतनी बात हम सही रूप से जहां तक नहीं समझेंगे, सुख दुख के विषय में हम मनमानी कल्पना करेंगे और सुख का पता नहीं लगेगा, ये बात समझाएंगे। तो हमारा तो यहां से शुरुआत होती है इस विषय में। धर्म ग्रह में हम कुछ नहीं समझते, यही धर्म है। सच्चा सुख के प्राप्त होना यही धर्म है।
अच्छा पंडित जी साहब, मनुष्य की सेवा करना अच्छा है या दान करना अच्छा है?
पहले तो हमारी मर्यादा हम समझे।
सेवा करना अच्छा है।
पहले तो हमारी मर्यादा हम समझे। हम एक जीव है, जीव क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। जीव अपना भाव कर सकता है, अजीव का कोई कार्य जीव नहीं कर सकता। भाव कर सकता है, करने का अधिकार नहीं है। जैसे मैं आपकी सेवा करके आपको सुख पहुंचाना चाहता हूं, ऐसा भाव में कर सकता हूं। वास्तव में आपके उस अनुकूल पुण्य का उदय होगा जब कुछ आपस में कुछ क्रियाएं ऐसी बनेगी कि जिसको आप सेवा कहेंगे।
वो सही आपका कहना, मतलब पुण्य उदय हो रहा है और अपनी भावना बन गई है।
आपका पुण्य उदय मेरा अधिकार का विषय नहीं है, ना आपका पाप का उदय मेरा अधिकार का नहीं है। मैंने तो आपकी सेवा का भाव किया, उतना ही मेरा अधिकार।
मेरा जो मेरी जो
भावना है, मेरा कोई अधिकार नहीं।
ऐसा नहीं, अधिकार का विषय अलग है मेरा। मेरी जो भावना है क्या है कि मनुष्य की सेवा करना अच्छा है या दान करना अच्छा है,
मैंने दोनों में से दोनों प्रकार के भाव हम कर सकते हैं, कार्य
भाव दोनों सही है सर, अपनी अपनी जगह।
हाँ, कार्य करना हमारा अधिकार की बात नहीं है। अगर हमारा अधिकार की बात होती तो इस जगत में हम किसी को दुखी रहने नहीं देते, न हॉस्पिटल होती, न कोई दान करने के दूसरे के लिए जगह रखते हम।
ये भावना बनाना नहीं बनाना,
भावना हो सकती है
जैसे अगर,
लेकिन हमारी मर्यादा अगर समझेंगे तो आकुलता नहीं होगी। वरना क्या होगा कि हमारे भाव के अनुसार कार्य नहीं होगे ना, तो हम आकुलित हो जाएंगे। हम ऐसा चाहते थे, हुआ क्यों नहीं,
नहीं
हम ऐसा चाहते थे, हुआ क्यों नहीं, दुख कहाँ से उत्पन्न होता है
होना
कि हमारे विकल्प के अनुसार परिस्थिति नहीं बनती है तो हम दुखी हो जाते हैं। दुख कहाँ से पैदा होता है,
दुख का विषय
नहीं, हमारे इच्छा के अनुकूल परिस्थिति पैदा निर्माण नहीं होती तो हम दुखी होते हैं। अगर हमारी चलती तो इस विश्व में हम किसी को दान देने की जगह ही नहीं रखने देते, या दूसरे को सेवा करने के मौके ही नहीं रखने देते, अगर हमारी चलती तो। लेकिन हमारी चलती है, इसलिए हम भाव करें। ठीक
है, भाव करना अच्छा है,
भाव करना अच्छा है, तो व्यापार करना अच्छा है, लेकिन किसका, सब्जी का या हीरे का, ये सवाल है। तो भाव करना अच्छा है,
मेरा
भाव देखो, पाप भी एक भाव है, दूसरे को परेशान करना ये भी एक भाव है, परेशान ठीक, एक तो पाप के होते हैं, एक पुण्य के भी होते हैं, जैसे सेवादान पूजा भक्ति कुछ भी होते हैं, और एक वितराग के होते हैं। तो तीनों में से कौन से भाव अच्छे हैं, जब भाव ही करना है तो कौन से अच्छे हैं, इसका विवेक हमें करना पड़ेगा। पाप के भाव अच्छे हैं या पुण्य के अच्छे हैं या वितरागता के अच्छे हैं, तीन प्रकार के भाव, चौथे प्रकार के भाव जगत में किसी के नहीं होते, ये फाइनल है। हो तो बता दो आप, अच्छा जब है तो फिर हम किस कौन से भाव करना है।
जैसे हमारा भाव हुआ कि हमारे बहन और मैंने रोज ये धर्म की चर्चा के विषय में जानकारी बहुत बोलते हैं, आत्मा के लिए कि आत्मा ही सब कुछ है, हमारे बहन वो नहीं है, उन्होंने बोलते भाई आत्मा ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है, सब बेकार है, तो ये सही है क्या?
आत्मा आत्मा के लिए सब कुछ है और आत्मा अनात्मा के लिए कुछ नहीं है, ये साइंस है। अनात्मा अनात्मा के लिए सब कुछ है और अनात्मा आत्मा के लिए कुछ नहीं, ये अस्ति नास्ति है, ये वस्तु स्थिति है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते।
आत्म कल्याण के लिए मनुष्य को कौन से स्टेज जाना चाहिए,
सबसे पहले कहां से शुरू करना आत्म कल्याण के लिए, आत्म कल्याण कहो या आत्म शांति कहो एक ही बात है, या जन्म मरण से लेकर के सभी प्रकार का दुख का नाश कहो उसको आत्म कल्याण कहो, तीनों एक बात है। कि न जन्म होगा, जन्म का ना जन्म के कल का दुख होगा, न मरण के समय का दुख होगा, न कोई पीड़ा बाधा का दुख होगा, न कोई टेंशन का दुख होगा, किसी प्रकार का दुख नहीं हुए उसको ही आत्म कल्याण कहते हैं, उसको आत्म शांति कहते हैं, आत्म सुख कहते हैं। इसके लिए क्या करना, ये बुद्धिमान आदमी को, विचारवान आदमी को सबसे पहले इस लाइन पे जाना है, इसी जिज्ञासा में आना है। तो इसके लिए हमारे पुण्य योग से बहुत सा साहित्य पढ़ा है, उसमें इसलिए विज्ञान भरा है सारा, ये धर्म ग्रंथ नहीं है, ये वैज्ञानिक वॉल्यूम्स है, सब साइंटिफिक वॉल्यूम्स है, इसमें सब साइंस भरा है। प्रारंभ कैसे करना, आगे कैसे बढ़ना, ये सब बात इसमें रही है। तो इसके लिए हमें थोड़ा, सबसे पहले हमारा कर्तव्य या ड्यूटी ये है कि हम इस बात को समझे, अच्छी तरह समझे, और समझ करके उसको अंगीकार करें, उसका प्रयोग करें, तो वो उतनी सॉलिड बात है कि उसमें सुख हुए बिना रहेगा नहीं, जन्म मरण का नाश हुए बिना रहेगा नहीं, कोई चिंता होने वाली नहीं। आपको बताया ना कि जिसको मरण का भय नहीं है उसको और चिंता किसकी होगी, ये बात है। तो इसलिए पहले शुरू से ही समझदारी से काम लेना है और समझना शुरू करना है। सही बात समझे हम, अपनी भलाई के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए समझे। किसी के लिए हमें कुछ नहीं करना है, धर्म भी किसी के लिए नहीं करना है, समझना भी किसी के लिए नहीं करना है, हमारे लिए करना है।
तो समझ उत्पन्न हो गई, इसके लिए डेली रूटीन में क्या करना चाहिए?
जहाँ वो समझ मिले वहाँ वो समझने का मिले वहाँ उसका संग करना चाहिए। समझ, सही समझ के लिए सबसे अच्छा साधन सत्संग है, जहाँ उसकी चर्चा चलती हो, परिचर्चा चलती हो, उसका अध्ययन चलता हो, वही सबसे अच्छी बात है।
तो उसके लिए वक्त भी तो निकालना पड़ेगा अपने दूसरे काम में।
समय का कोई तोड़ा नहीं है, अनंत काल पड़ा है हर एक चीज को, और समय हर एक के पास है। जहां भी उनको अपना मतलब है वहां उनका समय है। कहां समय है आदमी का? जहां भी अपना अपना मतलब है वहां ही समय गुजरता है, आदमी गुजारता है। समय नहीं है सो बात ही नहीं है। कितना भी धंधा है, खाने पीने का समय मिलता कि नहीं मिलता, नींद का समय मिलता कि नहीं मिलता, आवश्यकता लगनी चाहिए। जिसकी आवश्यकता है, जिसका मतलब है, वहां समय है हमारा। समय नहीं है सो बात ही नहीं। अगर हमें आत्मा की सुख शांति की आवश्यकता लगती है तो इसके लिए समय निकलेगा, निकालेंगे हम।
इसका स्टेज क्या है? इसका स्टेज क्या, कौन सा स्टेज पे आदमी को इस स्टेज पर घूमना चाहिए, मतलब हम जाना चाहिए, अपना लेना चाहिए इसको?
हर स्टेज में जब से ये पता चला कि हमें आवश्यकता है वहां से उसका स्टेज शुरू चालू होगा। हर हालत में ऐसा नहीं है कि पैसे वाला ही ये कर सकता है, ऐसा नहीं है कि गरीब ही कर सकता है, हर हालत में कर सकता है। हमारे तीर्थंकर देव के समोसरण में तिर्यंच भी करते हैं, देव भी आते हैं देवलोक से। हमारे समोसरण की रचना आप देखिए, उसमें देवलोक का देव की भी उपस्थिति है, मनुष्यों की भी है, त्रियंचों की भी है, त्यागियों की भी है, और गृहस्थियों की भी है, चक्रवर्ती की भी है, राजा की भी है, रक्त की भी है, सबकी है। हर करते हैं, कोई भी जीव कर सकता है, जब भी चाहे कर सकता है।
इतनी ताकत है कि अभी धर्म हो गए?
हाँ, पूरी ताकत यही है, जीव में बहुत ताकत है, आत्मा में शक्ति बहुत है। एक अस्तित्व शक्ति इतनी है कि कभी उसका विनाश नहीं होता। एक ज्ञान शक्ति है कि ज्ञान को बंद नहीं कर सकते, बंद कर दो जानना है, अगर कर सकते हो तो। कितनी शक्ति है ज्ञान की, भीतर में कितना ज्ञान भरा हुआ है कि जो हर हमेशा चालू रहता है, निकलता ही रहता है, बंद नहीं होता है। एक तेल का कुआं मिल जाता है ना, जो निकलता ही रहता है, बिना पंपिंग बाहर आता ही रहता है, तो बोल क्या बोलता है, क्या बोलता है? नहीं, नहीं, तेल निकलता है ऐसा बोलता है, सोना निकलता है ऐसा बोलता है, क्या बोलेगा?
पेट्रोल डाला है।
ये जो बारिश आती है, पानी गिरता है, क्या गिरता है? अगर हमने खेती कर ली है तो सोना गिरता है, पानी नहीं गिरता है। ऐसे भीतर में से जो निकलता है ज्ञान आदि, जिसमें जन्म मरण का नाश होता है, ऐसा अंदर कुछ भरा है सत्व, वो क्या है? वो अमृत है, अमृत। हाँ, भीतर में अमृत भरा है, तो अमृत को निकालना है।
इस मनुष्य जीवन में उसका पता लग सकता है,
बराबर पता लग सकता है। आनंद है वो, अमृत है, पर सेवा आनंद सब है सो जहर ही बदलना, इसलिए तो पहले कैसे बदलना हो समझे कभी साइंस समझे कभी तरीका होता है, साइंस है ना, जब फिर कोई आपत्ति नहीं। लड़के को पढ़ाए स्कूल में बिठाते के नहीं, वैसे ही काम भी समझ, इनके लिए स्कूल है, इसके लिए भी पाठशाला है, इसके लिए भी ग्रंथ है, इसके लिए भी जानकारी करने वाले लोग हैं, सब है, उपलब्ध है जगत में।
इतना पुण्य है अभी,
हाँ पुण्य है, अभी विनाश नहीं हो रहा है, इस हाल में तो है। और हमें गरज चाहिए, इसकी आवश्यकता लगे तो गरज हुए बिना रहे नहीं, ये बात है।